जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम् सर्वधर्माणाम् जैनम् जयतु शासनम् जैनम् जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करी मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज आभव तरुणो मूल एक जानो मिथ्यात्भाव तेने करी निर्मूल वे करिये मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित परवर टोडरमल जी विरचित ये अनुपम ग्रंथ राज मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र यहाँ विराजमान है। उसके सातवें अधिकार के आधार से अपन ने चर्चा करने का मन बनाया है। सातवां अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैन शास्त्रों का अभ्यास करने पर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, उसकी गहरी रिसर्च मीमांसा इस अध्याय में की गई है। पंडित जी ने वह भूल जो है अति संक्षेप में पहले से ही बता दी, जो पंक्तियां कल अपन ने पढ़ी थी पेज नंबर 198 जहां विषय प्रारंभ हुआ है। जिनागम मान निश्चय व्यवहार रूप वर्णन छे तेमा यथार्थ नु नाम निश्चय तथा उपचार नु नाम व्यवहार छे तेना स्वरूप ने नहीं जानता अन्यथा प्रवर्ते छे ते अहीं कहिए छिए। अब आप ये ऐसा समझ लेवे अपन कि जैसे कुंद कुंदाचार्य देव दो लाइन की एक गाथा लिखते हैं, अमृतचंद्राचार्य देव उस पर 20 पंक्तियों की टीका लिखते हैं, गुरुदेव उस पर 20 पेज की व्याख्या करते हैं। इसी तरह से ये दो पंक्तियों का एक सूत्र फार्मूला है कि यथार्थनु नाम निश्चय ने उपचारनु नाम व्यवहार छे तेना स्वरूप ने नहीं जानता अन्यथा प्रवर्ते छे ते अहीं कहिए छिए। आप समझ लीजिए ये दो लाइन की गाथाओं जैसा फार्मूला है, सूत्र है। पूरा सातवां अधिकार इसी का विस्तार है, वो इसी की टीका है, यूं समझ लें अपन। ऐसा भी होता है कोई आचार्य ग्रंथ लिखते हैं और खुद ही उसकी व्याख्या लिख देते, जैसे एक आप तो परीक्षा नाम का ग्रंथ है, वो 900 वर्ष पहले विद्यानंद स्वामी हुए, उन्होंने ग्रंथ लिखा और फिर बाद में खुद ही उसकी टीका लिख दी। ऐसे ही ये है, अपन जो भी वर्णन पढ़ेंगे अब निश्चयाभासी व्यवहाराभासी उभयाभासी, खासकर ये तीन का समझ लो अलग हिसाब किताब है और सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है उसकी लाइन अलग है, उसका दर्शन मोह मंद हो रहा है, हो चुका है और हो रहा है, इसलिए वो सम्यक्त सन्मुख कहलाता है। ये तीन जीवों का मिथ्यात्व मंद नहीं होता, बल्कि ये जिनागम के आधार से ही जिनागम का विपरीत श्रद्धान करके मिथ्यात्व पुष्ट करते। तो ये तीन जीव मिथ्यात्व पोषक हैं, और वो जीव जो है मिथ्यात्व को नाश करने की ओर आगे बढ़ रहा है, इसलिए उसका नाम रखा सम्यक्त सन्मुख। इसे अपन यूं समझ सकते हैं कि जैसे आपको यहां से बॉम्बे जाना हो और कोई इसका मैप बराबर नहीं जानता हो, और जो आपको मान लो लेफ्ट टर्न लेनी है बॉम्बे जाने के लिए, तो लेफ्ट टर्न ले ली तो आप बॉम्बे के सन्मुख हो गए, लेकिन किसी ने लेफ्ट के बजाय राइट टर्न ले ली तो बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी सड़क है, ट्रैफिक भी नहीं है, खूब आराम से चल रहा है, और जितनी स्पीड से चलेगा उतना ही वो मंजिल से दूर होएगा, है? ऐसे ये तीन जो हैं, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी, ये जितनी स्पीड से चलते हैं, खूब व्रतशील संयम पालें इत्यादि इत्यादि, शास्त्र अभ्यास करें, आत्मा आत्मा की बातें करें, आत्मा का चिंतन करें, आत्मा का विचार करें, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ऐसा विचार करें, तो भी वो मंजिल से दूर जाने वाले। ये बड़े आश्चर्य की बात है, हा? समझने लायक बात है, थोड़ा सूक्ष्म बात है कि आत्मा की बात करने से तो सम्यक्त नजदीक आना चाहिए, दूर कैसे जाएगा? बोलो, आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, चैतन्य लक्षण वाला है, गुण पर्यायों का अभेद पिंड है, अनंत धर्म अनंत गुण इसमें विराजमान है, जैसे लिखा ना 80वीं गाथा में, द्रवगुण पर्याय से अनंत को जाने, उसका मोह नाश अवश्य होता है। तो वो पद्धति से निर्णय करे, नहीं तो बहुत से लोगों को बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अन्य दर्शनों में भी, दूसरे बाबा लोग भी, दूसरे साधु लोग भी, अभी तो टीवी पे कितनी सारी दुकानें खुली हैं, वो भी आत्मा की बात करते हैं, वो भी कहते हैं शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। तो अपने कई लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है, बेस तो एक ही है आखिर, चाहे जैन दर्शन हो चाहे गीता हो, आत्मा की बात तो दोनों जगह है। बोलो अक्षय भाई। मुझे पता नहीं यहाँ किसी का ऐसा अभिप्राय है कि नहीं, मैं तो अपना जो चिंतन जो सम्यक्त के लिए जरूरी है वो बताता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि श्रोताओं पर लागू नहीं हो, ऐसी मान्यता तो बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव को सुनने वालों को इतना तो पता चल ही जाना चाहिए। अभी जो अपन ने 22वीं गाथा का व्याख्यान सुना, आज पूरा हो गया वो, 23वीं 24वीं चालू होगी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। जब मैं आया तो शुरुआत में यही चल रही थी कि द्रवलिंगी मुनि अन्य मत के कहे हुए तत्व की तो श्रद्धा होती नहीं, उसको जैन मत में जो सात तत्व कहे हैं उसी की श्रद्धा होती, छता तो भी वो सम्यक दर्शन नहीं है, तो क्यों नहीं है? विपरीत अभिप्राय मिटा नहीं, जीव को अजीव माने, अजीव को जीव माने, समर को आश्रव माने, आश्रव को समर माने, शुभ भाव में धर्म माने, जड़ की क्रिया का कर्ता मैं हूं ऐसा माने, फिर शास्त्र ज्ञान के बल पे कहा शास्त्रों में जो सात तत्व लिखे हैं वो बराबर है, ऐसा क्षयोपशम ज्ञान में तो यही माने कि शास्त्रों में जो सात तत्व लिखे हैं वैसे ही वस्तु का स्वरूप है, लेकिन उसमें अपने को देह आदि की क्रिया का कर्ता मानना ये उसका भी अग्रहित मिथ्यात्व पोषण होता रहता है। यहां तो गृहित की बात है, वहां अग्रहित की बात। अग्रहित माने अनादि से चला हुआ, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री मक्खी मच्छर सबको होता है, तो ठीक है। तभी निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास, ये तीन पॉइंट पे मेन बात अपनी आज चलना है, फार्मूला यही रहेगा, थोड़ा इसको देख लें। निश्चय व्यवहार रूप वर्णन छे, किसका? जिनागम में है, किसका वर्णन है? हैं? तत्वा सूत्र में सूत्र आता है जीवा जीवादी जीवा जीवास्त्रव बंद सम्मर निद्रा मोक्षास्तत्वम, फिर बाद में तत्प्रमाणे आद्य प्रमाण नयैर अधिगम, ये मूल सूत्र है। प्रमाण नयैर अधिगम, प्रमाण और नय के द्वारा ये जीव जीव आश्रव बंद समर निधरा मोक्ष का स्वरूप कहा गया है जिनागम में। इसमें तो खाली इतना लिखा कि निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, पर कौनो वर्णन छे है? ताजमहल का वर्णन है कि कुतुब मीनार का वर्णन है कि मेट्रो ट्रेन का वर्णन है कि तुम्हारे जो खाने पीने की चीजों का आता है ना, बहुत सारी चीजों की रेसिपी आती उसका वर्णन है, काय का वर्णन है? तो सात तत्वों का वर्णन। उसे अपन और सरल करने के लिए दो डिवीजन कर सकते हैं, एक तो वस्तु स्वरूप का वर्णन है और दूसरे मोक्ष मार्ग का वर्णन। ये भी बड़ी मजेदार बात है। वस्तु स्वरूप का वर्णन माने आपने हिंदुस्तान का नक्शा किसी स्कूल में क्लास में लगा रखा है तो वो बम्बई किधर है, दिल्ली किधर है, कलकत्ता किधर है, किधर क्या है, कहाँ कौन से रेल जाती है, तो वो वस्तु स्वरूप की बात हुई, वो आगम शैली की बात। अब उसमें मुझे कहाँ जाना है या मैं कहाँ रहता हूँ, हम जहाँ रहते हैं वो बम्बई नगर इस इधर में ये पॉइंट पर है, तो ये प्रयोजन भूत बात हो गई है। आगम शैली माने वस्तु व्यवस्था, अध्यात्म शैली माने प्रयोजन, ऐसा है, प्रयोजन की बात है। तो निश्चय व्यवहार शैली से वस्तु का वर्णन भी है और निश्चय व्यवहार शैली से मोक्ष मार्ग का वर्णन भी, दोनों बातें। और गहराई से देखो तो एक में दूसरा समझ आता है, मोक्ष मार्ग की वस्तु स्वरूप के भीतर आता है, वो कोई उसके बाहर थोड़ी है। और मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन में सात तत्व की श्रद्धा है, तो उसमें भी वस्तु स्वरूप आ गया। यानी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, लेकिन समझने के लिए अपन वस्तु स्वरूप माने द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य इसको कहते हैं, गुण इसको कहते हैं, पर्याय इसको कहते हैं, ख्याल में आया? एक द्रव्य में वस्तु में दूसरी वस्तु को मिला के कथन करना। आत्मा का वर्णन वो वस्तु स्वरूप के वर्णन में आएगा, सुनना ध्यान से। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन वो मोक्ष मार्ग के वर्णन में आएगा। अभी अपन प्रयोग करके देखते हैं। आत्मा का निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है जिनागम में। अब इसमें कौन से में अपने दिमाग में लिख लो, जिनागम में आत्मा का निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है तो कैसा होगा, कैसा वर्णन है जिनागम में? तो गोमट सार आदि ग्रंथों में मनुष्य है, देव है, नारकी है, त्रयंच है, स्त्री है, पुरुष है, ख्याल में आया ना, 14 गुण स्थान वाला है, 14 मार्गणा स्थान वाला है, अरे बहिरात्मा है, अंतरात्मा है, परमात्मा है, ऐसे जीव के अनेक तरह से जो भेदों का वर्णन है वो क्या है, वो व्यवहार रूप वर्णन। व्यवहार की चर्चा में दो दिन में थोड़ी बहुत काफी कर चुका हूं, कहने की चीज है, अनुभव की चीज नहीं है। वो भी कहना इसलिए पड़ता है कि उसके बिना परमार्थ को कहा नहीं जा सकता है। अभी ये भी बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। एक बार में जब ये बंबई डूब गई थी ना, कितने साल हो गए, 10-12 साल हो गए, बहुत ज्यादा एक रात में पानी बरस गया था, हम तो फंस गए थे फ्रैंकफर्ट में 24 घंटे और फिर बड़ी मुश्किल से चेन्नई आए, चेन्नई में 2 दिन रुके, तो मंदिर गए तो एक भाई से चर्चा हुई, देखो आत्मा तो अनुभव में तो नयों का कोई काम है नहीं, और अपने को तो अनुभवी होना है, पंडित थोड़ी होना है, इसलिए हमको ये नए भाई की समझने की जरूरत नहीं है, ये तो पंडितों का काम। ऐसा लगता है जैसे पंडित कोई 2 नंबर के जीव होते हों, कोई गलत टाइप के लोग आ गए हों, आतंकवादी टाइप के गलत जैसे लोग हो गए हों, पंडित मैंने कहते पंडित के बेकार चीज है, आपने तो अनुभवी थे। ऐसा मैंने उनसे तो क्या कहा, लेकिन उससे फिर मेरा चिंतन डेवलप हुआ। कुंद कुंदाचार्य देव ने पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा। तत्काल छठवीं सातवीं गाथा में कोई भूमिका बनाए बिना डायरेक्ट शुद्ध आत्मा का स्वरूप छठवीं और सातवीं गाथा में दिखा दिया। कैसे दिखाया, किस तरीके से, वो जुदी चीज। फिर आठवीं गाथा में क्या आया, आप देखिए, आठवीं से बारहवीं तक पांच गाथाएं निश्चय व्यवहार के बारे में हैं। यानी उन्होंने शुद्धात्मा के बगल में निश्चय व्यवहार नयों को बिठाया है, इतना ऊंचा स्थान दिया। बगल में कौन बैठता है, राष्ट्रपति के बगल में उपराष्ट्रपति बैठता है, अध्यक्ष के बगल में उपाध्यक्ष बैठता है, तो उसका भी अध्यक्ष जैसा ही मान सम्मान है ना, तभी तो बगल में बिठाया है। मंत्रिमंडल की मीटिंग होती थी, जो पीएम के बगल में बैठता है तो लोग बाग कहते हैं यार इस बार तो अमित शाह को बिठाया था, समझ में आया ना, दो नंबर की जगह पे अमित शाह को बिठाया था तो उसका मान बढ़ गया। ऐसे मेन शुद्धात्म तत्व जो है सम्यक दर्शन का विषय, उसके बगल में निश्चय व्यवहार को कुंद कुंदाचार्य देव ने रखा है। और किस व्यू से, कि व्यवहार के बिना परमार्थ का प्रतिपादन अशक्य है, जैसे मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा बताना के बिना वस्तु स्वरूप बताना अशक्य है, वैसे व्यवहार के बिना परमार्थ को बताना अशक्य है। इसलिए व्यवहार अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है, वो उसने अपनी जगह बना रखी है जिनागम में व्यवहार नए नए। छता जैसे ब्राह्मण को मिलेच्छ नहीं हो जाना चाहिए, ऐसे अपने को भी व्यवहार का उपादेय नहीं मानना चाहिए, उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए, नानुसर्तव्य ऐसा शब्द है। तो ये बातें तो बहुत हैं, यह प्रकरण आ गया। तो आत्मा का व्यवहार रूप वर्णन, यानी शरीर की तरफ से वर्णन करना, कर्मों की तरफ से वर्णन करना, राग द्वेष की तरफ से वर्णन करना, पर्याय के भेदों की तरफ से वर्णन करना, ये क्या हुआ, ये व्यवहार रूप वर्णन। और शुद्ध ने से निश्चय ने से वर्णन किया जाए तो ये सबके ऊपर क्रॉस करेंगे, चौकड़ी मारेंगे कि मनुष्य नहीं है, देव नहीं है, नारकी नहीं है, रागी द्वेषी नहीं है, अरे मिथ्या दृष्टि नहीं है, बहिरात्मा नहीं है, अंतरात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो कौन है। ज्ञायक एक भाव छे, लवी होदी अपमत्तो जे प्रमत्त नथी अप्रमत्त नथी, एक ज्ञायक भाव छे, ए रीत शुद्ध कहाय, अने ज्ञात तो तेज छे। ये है ज्ञायक भाव, चैतन्य भाव, ध्रुव स्वभाव, सामान्य भाव, एक रूप भाव, अखंड भाव, त्रिकाली भाव, इत्यादि इत्यादि बहुत से नाम है। वो निश्चय ने का वर्णन। तो आत्मा का वर्णन दो तरीकों से। अभी मोक्ष मार्ग का वर्णन, तो मोक्ष मार्ग का वर्णन भी दो स्टाइल से है। इसके लिए तो मैं वो छह ढाला का सपोर्ट लेता हूं। इसके पहले जो कल मैंने हिंट किया था कि माल और पैकिंग के उदाहरण से अपने को निश्चयाभास, व्यवहाराभास, अव्ययाभास समझना है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने शायद वो छोटी सी पुस्तक है क्रिया परिणाम और अभिप्राय, वो पढ़ी होगी, डॉक्टर साहब ने तो पढ़ी है, हैं? नहीं पढ़ी हो तो भाई जरूर पढ़ने लायक है। तो उसमें यहां से विषय शुरू किया है, वो तो भूमिका तो यम नियम संयम आप कियो पुनि त्याग विराग अथाग लयो, यहां से चालू की। फिर मूल विषय जो है कि दुनिया में जितनी चीजें होती हैं सब विथ पैकिंग दिखाई देती। आप देखो कुदरत में भी जो प्रोडक्शन होता है ना विथ पैकिंग होता है, हैं? गेहूं होता है तो उसके ऊपर भूसे का कवर होता है, चावल होता है तो उसके ऊपर धान का छिलका होता है, फ्रूट होता है तो उसके ऊपर भी छिलका होता है, कैरी होती है तो उसके ऊपर छिलका है, अंदर गुठली है, अंदर रस है। ऐसी कौन सी चीज है जो प्योर आती हो, मुझे बताओ। अरे गाय भी दूध देती है तो वो पानी के साथ में देती, समझ में आया, मिल्क पाउडर नहीं आता उधर से, है? आप देखो खान में से जो चीजें निकलेंगी ना स्वर्ण निकलेगा तो पाषाण के साथ में, और भी न्याय की भाषा में बोलते किट कालीमा, उसमें दूसरी धातुएं मिट्टी इत्यादि वो भी मिली रहती, तो उसको तपा के शुद्ध किया जाता है। यानी कोई चीज प्योर होती नहीं है कुदरत में भी, समझ में आया। और मनुष्य जो प्रोडक्शन करता है वो माल अलग बनाता है, पैकिंग अलग बनाता है। हम जब नैरोबी गए तो जो हमको एयरपोर्ट पे लेने आए तो उनने वो किताब पढ़ रखी थी, तो बोले भाई साहब जिसको आप पैकिंग बोलते हो ना वो ही हमारा माल है। हम तो पैकिंग का प्रोडक्शन करते, डब्बे बनाते हैं खाली और वो कंपनियों को दे देते हैं। खैर, तो दवा कहीं बनेगी, दवा की शीशी कहीं बनेगी, शीशी का जो पुट्ठे का डब्बा है या जो प्लास्टिक की डिब्बी है वो कहीं और बनेगी, फिर वो सबको मिला के पैकिंग की जाएगी। लेकिन बाजार में बिना पैकिंग के कोई चीज नहीं मिलती। ऐसे संसार में बिना पैकिंग के कोई जीव नहीं होता है, ये मुझे कहना है। ये जीव है ना आत्मा, भगवान आत्मा, ये विथ पैकिंग है कि विदाउट पैकिंग है? अभी पैकिंग है कौन सी? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म की पैकिंग है। अच्छा, कोई ऐसा हो सकता है जीव वो पैकिंग बिल्कुल नहीं हो, विदाउट पैकिंग हो? कोई है ऐसा? सिद्ध भगवान है, उनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हो गए, इसलिए वो जैसा आत्मा स्वभाव से शुद्ध है वैसा पर्याय में शुद्ध प्रकट हो गया। उनका तो शरीर भी छूट गया, ये शरीर भी छूट गया, कर्म तो पहले ही छूट गए, राग द्वेष तो पहले ही छूट गए थे, तो वो एक शुद्ध आत्मा विदाउट पैकिंग है। अभी क्या होता है कि बहुत से जीव जो हैं वो पैकिंग का सर्वथा निषेध करते, जिसकी क्या जरूरत है, ख्याल में आया ना, इसमें बेकार का पैसा लगाना, तो हमें तो माल से मतलब है। जैसे एक श्रीमान जी की ऐसी थिंकिंग थी, एक बार वो केला खरीदने गए, तो यहां तो डजन से मिलता होगा शायद, हम जयपुर गए थे वहां तोल के मिलता था, तो पूछा क्या भाव, वो बहुत सस्ते का जमा 2.5-3 रुपया किलो ऐसा, तो 3 रुपया किलो लिया, तो वो बोलता कि यार तुमने तो छिलका भी 3 रुपये किलो में तोल दिया, बात तो केले की हुई थी, तुमने तो छिलका भी वही भाव दे दिया। तो केले वाला भी चतुर था, बोला भाई साहब आप कहो तो छिलका उतार के दे दें, बोलो मंजूर है? है? पैकिंग के दो काम हैं, सुनना ध्यान से, पैकिंग के, वो इसमें लिखा नहीं है। इसमें तो थोड़ा शास्त्रीय एंगल से और निश्चयभाषी की भूलें बताई, मुझे एक एक भूल का डिटेल नहीं करना है, मुझे तो फार्मूला बताना है कि निश्चयभास किस फार्मूले पे खड़ा होता है। इसका स्वरूप तो यह है, देखो कोई जीव निश्चय ने नहीं जानता, निश्चय ने वस्तु स्वरूप, निश्चय यानी वास्तविक स्वरूप, निश्चय ने नहीं जानता, मात्र निश्चयाभासना श्रद्धानी बनी, पोताने मोक्ष मार्गी माने छे, पोताना आत्मा ने सिद्ध समान अनुभवे छे, पण पोते प्रत्यक्ष संसारी होवा छता ब्रह्म थी पोताने सिद्ध माने, एज मिथ्या दृष्टि छे। इसकी चर्चा तो ये बिल्कुल अलग एक प्रकरण है, समझ लो यहां से निश्चयाभासी की इसमें जो 6-7 प्रकार की विपरीत मान्यताएं बताई हैं उसमें पहली मान्यता ये है। लेकिन जितनी भी विपरीत मान्यताएं होवे वो क्यों हुई, वो व्यवहार नय का सर्वथा निषेध करने के कारण हुई। क्या बोला? व्यवहार नय का, व्यवहार नय माने संयोग से वस्तु का कथन करना। अब बिना संयोग के आप बता दो कोई कथन करके तो मैं जानू आपको कैसे। जैसे हम जबलपुर जाते हैं ना ट्रेन में, तो वो सुबह 6 बजे पहुंचती है, नासिक से निकलती है समझ लीजिए 5 बजे शाम को, और सुबह 6 बजे पहुंचती, तो हमारे फैमिली वाले फोन कर लेते 5 बजे, अभी कहां पे हो आप? तो भैया हम तो ट्रेन में ही हैं, ये भी व्यवहार का कथन है, लेकिन अभी तो ट्रेन में, वो तो हमें तो पता है ट्रेन में हो, लेकिन ट्रेन कहां पे है अभी तो हम नहीं बता सकते। क्यों? बाहर देखो तो कुछ दिखता नहीं है, कोई स्टेशन नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, किसी गांव का नाम नहीं लिखा, उस पे वो पट्टी चलती है वो भी बंद है। कोई कोई ट्रेन में चलती ना कि आप कहां पर हैं, कितनी दूर हैं, आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा है, तो वो भी बंद है। कहते भैया हम कह नहीं सकते कहां पे, तो हम कहीं हैं ये फील तो कर सकते। अनुभव करने के लिए सापेक्षता की जरूरत नहीं है, अनुभव निरपेक्ष है, ख्याल में आया? लेकिन कथन करने के लिए कहां पे हैं ये सापेक्षता की जरूरत। कहीं मान लो आपकी गाड़ी खराब हो जाए, हाईवे पे जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं कार से, और गाड़ी खराब हो गई, तो आप किसी को मैसेज देंगे तो कुछ तो बताएंगे, फलाने गांव से 10 किलोमीटर दूर है, कि यहाँ के 10 किलोमीटर बाद उतना है, तो कोई गांव का सहारा तो लेना पड़ेगा ना आपको। ये व्यवहार, एक चीज को बताने के लिए दूसरे चीज का सहारा लेना, इसको जिनागम की शैली में व्यवहार ने कहते, ख्याल में आया? तो वो कहता है पैकिंग की जरूरत क्या है। तो पैकिंग के दो काम है ये समझ लो, एक तो माल को सुरक्षित रखना और दूसरे माल की पहचान कराना। देखो दवा के ऊपर दवा का नाम नहीं लिखा रहता, और शीशी के ऊपर नाम लिखा है जबकि उसमें दवा नहीं है। शीशी कांच की है, वो स्वयं दवाई नहीं है, हैं? तो जो जहां नाम है वहां दवाई नहीं है, और जहां दवाई है वहां नाम नहीं। लेकिन तो भी जगत की जो स्टाइल है, जगत की शैली है, वो इसी पद्धति से चलती। तो सीसी तो फोकट की है, उससे क्या काम है, अकेली दवा ले लो, ऐसे हाथ में ले आओ, जेब में रख के ले आओ, ऐसा नहीं चलता है। तो पैकिंग का सर्वथा निषेध करे, यानी पर्याय का सर्वथा निषेध करे, भेदों का सर्वथा निषेध करे। ये शरीर, ये जो वेदांत हुआ ना, ये निश्चयाभास इसलिए हुआ, ये भी एकांत मिथ्या थे, ख्याल में आया? क्यों हुआ? एक ब्रह्म ही है जगत में, बाकी कुछ है ही नहीं है, वो तो सब सपना है, वो तो सब माया है। तो जैनाचार्य बोलते सपना है कि नहीं, सपना तुमने देखा तो सपना भी है कि नहीं, तो दूसरी चीज हो गई ना, तो एक कहां रही, क्या ख्याल में आया? ऐसे बड़े जोरदार तर्क है न्याय ग्रंथों में है? तो व्यवहार का सर्वथा निषेध करना, उसका नाम है निश्चयाभास। और व्यवहार को ही परमार्थ मान लेना, पैकिंग में ही लुभा जाना, कि इतनी सुंदर, जब हम अमेरिका गए शुरू शुरू में, तो वहां तो हर चीज की पैकिंग इतनी बढ़िया, पानी की बोतल भी इतनी बढ़िया कि फेंकने का मन नहीं करे उसको। यार इतनी मजबूत, अपने यहां तो बिल्कुल ऐसी आती, जरा सब मोड़ो तो टूट जाए, ये तो इतनी मजबूत चीज, हर चीज की पैकिंग बहुत बढ़िया, थैली बढ़िया, पैकिंग बढ़िया, ये बढ़िया। तो पैकिंग में इतना लुभा जाए कि इसको तोड़ेंगे तो बेकार चली जाएगी, इसलिए तोड़ना नहीं, तो माल कैसे खाएगा? तो माल का उपयोग कैसे करेगा? तो जो पैकिंग कोई वस्तु मान लेता है, पैकिंग में ही लुभा जाता है, उसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं व्यवहाराभास। अभी कई लोग हैं वो हमारे लिए तो दोनों बराबर है, हम तो दोनों का समान रूप से आदर करते, हमारे लिए जैसा निश्चय वैसा व्यवहार, और जिनागम में ऐसा आता भी है कि दोनों नए जिनवाणी के हैं, दोनों सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं। और हमने चंदाचार्य ने तो यहां तक लिखा है 12वीं गाथा की टीका में कि यदि तुम जिनमत में प्रवर्तना चाहते हो तो दोनों नयों को मत छोड़ो, निश्चय को छोड़ने से तत्व का लोप हो जाएगा और व्यवहार को छोड़ने से तीर्थ का लोप हो जाएगा। तो लोग क्या समझते तीर्थ का लोप, यानी कि अपन व्यवहार को हे कहेंगे तो कोई शिखर जी नहीं जाएगा, कोई गिरनार जी नहीं जाएगा, कोई पावापुरी नहीं जाएगा, कोई वहां दान नहीं देगा, कोई वहां मंदिर नहीं बनाएगा, अपने तीर्थ सब दूसरी जगह से ही जा रहे हैं, समझ में आया ना? और ये लोग कहते हैं तीर्थ यात्रा में धर्म नहीं है, ये तो जड़ की क्रिया है, तो इसको हे बनाते हैं। तो भैया तीर्थों की सुरक्षा करना हो तो व्यवहार नए को मानना चाहिए, ऐसा बहुत से लोग समझते हैं। भैया वो तीर्थ तो क्षेत्र तीर्थ है और व्यवहार से तीर्थ कहा जाता है। समझ में आया? समीर शिखर गिरनार, समीर गिरी गिरनार, चंपा पावापुरी कैलाश को पूजो सदा 24 जिन निर्वाण भूमि निवास को, निर्माण क्षेत्र की पूजा है। तो ये व्यवहार की बात है। वास्तव में भगवान आत्मा तत्व है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय वितराग भाव वो तीर्थ है। जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। जो भाव से तारे संसार समुद्र से पार उतारे उसको तीर्थ कहते हैं। ख्याल में आया? और दूसरा समझ लो, तत्व का प्रतिपादन करना। शुद्धने का विषय चैतन्य तत्व वो तत्व है और उसको भेद से कहना, व्यवहार से कहना वो तीर्थ है। तो व्यवहार का लोप करेंगे यानी तत्व के प्रतिपादन का लोप हो जाएगा, क्योंकि प्रतिपादन बिना व्यवहार के हो ही नहीं सकता। देखो, आपने एक किसी के यहां मेहमान बन के गए, बढ़िया दूध पाक बनाया, आपने उसका स्वाद लिया। तो स्वाद लिया तो समझ लो कुछ कहने की जरूरत नहीं, स्वाद लेने में कोई विकल्प की जरूरत नहीं। विकल्प होएगा तो स्वाद की धारा टूट जाएगी, है? अब सामने वाले ने पूछा कैसा लगा, तो अभी कैसे बताओगे आप? तो उसके लिए कोई न कोई उसका विशेषण भेद करके तो बताना ही पड़ेगा। तो बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, इत्यादि इत्यादि, इसमें ड्राई फ्रूट डला है, ये वो। तो ये उसमें स्वाद का भेद किया, सद्भूत व्यवहार। कई लोग तो इतना मक्खन पॉलिश करने वाले होते, अरे साहब आपके हाथ इसमें लग गए आपके हाथ की चाय, आपके हाथ का दूध पाक, फलाना ढिकाना, तो हाथ का भी गीत गाएगा, असद्भूत व्यवहार से वर्णन करेगा। समझ में आया? स्वाद भेद से वर्णन करना वो सद्भूत व्यवहार, और वैसे बनाने वाले की तारीफ करना वो असद्भूत व्यवहार। लेकिन कुछ न कुछ सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे भगवान आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है, ये व्यवहार ने का कथन, लेकिन अनुभव करने लायक नहीं है। ये गुरुदेव का जो 45 वर्ष तक का जो पूरा वलन है, व्यवहार छे पण व्यवहार थी धर्म था है, कि व्यवहार थी निश्चय नी प्राप्ति था है, एम नथी। वो अनुभव करने लायक चीज नहीं है। अनुभव करने लायक तो एक अभेद शुद्ध नय का विषय है। तो दोनों नयों की उपयोगिता अलग अलग है। सुनना ध्यान से, पैकिंग और माल दोनों साथ में रहते हैं। दवा वो शीशी में ही रहती है, और बोला ऐसे ही जाएगा कि दवा कहाँ है, तो बोले वो शीशी में रखी हुई है। और दोनों साथ में है तो कि दोनों खाने लायक हो जाती, पैकिंग भी खाने लायक हो जाती है। दुनिया में कोई ऐसा मानता है? हमारे लिए तो दोनों एक सरीखे है। एक बार मैं कलकत्ते गया तो उनने वो छोटा केला आता, छोटा वाला, वो क्या बोलते उसको, एलची केला, तो सब्जी उसकी केले के छिलके के साथ में बनाई। हमने कहा क्यों भैया, आपने तो ये तो उभयाभासी सब्जी हो गई, इसमें छिलका भी है और केला भी है। तो बोले नहीं नहीं, हमारे यहाँ का छिलका भी बड़ा स्वादिष्ट होता है। हमने कहा गजब हो गया, हमारे यहाँ का छिलका फेंकने लायक है, तुम्हारे यहाँ का छिलका खाने लायक है। छिलका और माल दोनों को एक समान आदरणीय मानता है वो उभयाभास। बहुत उदाहरण है, बहुत प्रकरण है, बहुत पॉइंट है, वो चैप्टर बिल्कुल अलग है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, जो नए चक्र पुस्तक है और उसपे अपने व्याख्यान भी हैं, और नए रहस्य पुस्तक भी है, उसमें बहुत सरल भाषा में चार्ट बना के ये सब विषय प्रस्तुत किया है, वहां से समझना चाहिए। यहाँ तो केवल संक्षेप में इतना कहना है कि पैकिंग का सर्वथा निषेध करना निश्चयाभास है। पैकिंग को ही माल समझ लेना व्यवहाराभास है, और दोनों को एक सरखा मानना उभयाभास है। तभी अपन ने शुरू किया था मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में निश्चय व्यवहार या समझ लो पैकिंग और माल। तो छह डाला में पर द्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। ये पर से भिन्न मैं आत्मा हूं ये प्रतीति, जिसके समझ लो पूरे 45 वर्ष तक गुरुदेव ने इसी के गीत गाए, हूं ज्ञायक छू, हूं परमात्मा छू, एम नक्की कर, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, ऐसी प्रतीति उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये असली सम्यक, ये सम्यक का माल मूल चीज है, और उसके साथ में सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है, सात तत्व की श्रद्धा, ये विकल्प, ये भेद, ये व्यवहार में चला गया। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक्त नहीं है, सम्यक्त की पैकिंग है। वो इसमें उसका अपमान नहीं होता, पैकिंग को भी पैकिंग जैसी इज्जत तो दी जाती है ना, आखिर अभी बताया ना, वो माल का परिचय देती है। पैकिंग देखो, दो फ्रूट अलग, ऑरेंज अलग होता है संतरा, और मौसमी वो अलग फल है, भले ग्रुप एक ही है दोनों का, लेकिन फल तो दोनों अलग अलग है ना, और लगभग सकल लगभग एक सरीख ही रहती है। आप कैसे दोनों में फर्क करते हो? स्वाद तो जब खाओगे तब पता चलेगा, खरीदते समय कैसे पहचानोगे? वो पैकिंग से ही, छिलके से ही पहचानते है ना। जबकि छिलका तो फेंकने लायक होता है, लेकिन जब तक वो उस वस्तु के ऊपर लिपटा हुआ है तब तक उसकी सुरक्षा करता है और पहचान बताता है कि इस टाइप का छिलका होवे, ऐसे कलर का होवे, थोड़ा हार्ड होवे तो वो मौसमी समझना, इस टाइप का होवे तो वो संतरा समझना। ऐसा फर्क अपन छिलके ही से करते हैं ना, हैं? अरे आत्मा सब एक तरीके हैं, लेकिन ये मनुष्य है, ये देव है, ये त्रेंच है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बालक है, ये फर्क बोलो माल का है कि पैकिंग का है? ये शरीर क्या है? ये शरीर तो पैकिंग है ना, ये तो असली चीज नहीं है, असली आत्मा नहीं है ना। तो भी शरीर के संग में आत्मा है वर्तमान में, इसलिए शरीर की तरफ से आत्मा का वर्णन किया जाता है। ऐसा समय सार में तो ये बात जीवदी अधिकार में तो बहुत आई। तो ये फार्मूला मुझे बताना है, निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है किसका? वस्तु स्वरूप का और मोक्ष मार्ग का। तो अभी अपने सम्यक दर्शन की बात की, सम्यक दर्शन की पैकिंग और सम्यक दर्शन का माल, समझ में आ गया? शॉर्टकट में बोलता हूँ, जो व्यवहार सुवराग है देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, वैसे तो ये भी बड़ी दुर्लभ हो रही है। अभी तो गुरुदेव ने ये सब बताया है प्रसाद सिद्ध उपाय में। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से लोग बड़े कंफ्यूज होते, ऐसा लगता है कि उनकी श्रद्धा माने वो हमारा भला कर देंगे, ऐसा मानना। तो हमें तो इनके ऊपर बड़ी श्रद्धा है, कोई बोलते हमको उस मंदिर पे बड़ी श्रद्धा है, वहां के पारसनाथ पे बड़ी श्रद्धा है, किसी को वहां के शीतलनाथ पे बड़ी श्रद्धा है। क्यों भैया, क्या श्रद्धा है? वहां जाओ जो मनोकामना है वो सब पूरी होती। अरे गजब हो गया है, जिन्होंने संसार छोड़ दिया, जिन्होंने स्वयं मनोकामनाओं का नाश कर दिया और एक चैतन्य में लीन हो गए, अरे जिन्हें मोक्ष की भी कामना नहीं रही, ये बहुत बड़ी बात। परमार्थ से देखा जाए तो ज्ञानी को किसी पर्याय की कामना नहीं रहती, बहुत समझने लायक बात है भाई है। अरे व्यवहार में भले उसकी भावना होती है कि कब ऐसी दशा होगी, अपूर्व अवसर एवो क्या रे, आओ से कब निर्ग्रंथ बनूंगा, कब वन में जाऊंगा, कब आत्मा की साधना करूंगा, और वो देवसाथ गुरु का अर्घ चढ़ाए थे ना आज, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा, अरहंत मैं कब अरहंत सिद्ध कब बनूंगा, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ये विकल्प की बात, ज्ञानी को इस जाति के विकल्प होते हैं, कामना के नाम पर भी कामना नष्ट हो जावे ये कामना रहती। क्या बोला? कामना एक 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 काम, कामना माने इच्छा, एक इच्छा बची है प्रभु मेरी, कौन सी? कि मेरी इच्छाएं नष्ट हो जाएं, ये इच्छा बची है। मेरे न चाह कछु और ईश, रत्नात्रय निधि दीजे मुनीश, मुझ कारज के कारण सुआप, शिव करो हरो मम मोह ताप। ये मांगा भगवान से, एक विशापहार स्तोत्र है, अभिनय देवलाली में हमने उसका अर्थ किया था, विशापहार स्तोत्र। धनंजय कवि हैं, उनके बारे में ऐसी घटना हुई कि वो पूजा कर रहे थे और उनके बेटे को सांप ने डस लिया, ऐसी घटना घटी उनके साथ में, शास्त्रों में आती। गुरुदेव भी कभी कभी विशापहार स्तोत्र की उल्लेख करते। तो उनकी पत्नी को तो समझ लो उतना श्रद्धा नहीं होगा, बेटे के प्रति मोह तो रहता ही है माता को, तो ये तो पूजा में ही मस्त रहे, ये आए नहीं। ये तो लोगों ने कहा कि आप चलो चलो, बेटे को ऐसा हो गया है, उसका कुछ करो, वो तो बस भगवान की पूजा में ही मस्त रहे। तो पत्नी को बहुत समझ लो क्रोध भी आया, और वो बेटे को मूर्छित अवस्था में ला करके और वही मंदिर में ले आई और उनके सामने धर दिया, तो तुम संभालो, अभी भगवान से कह देना वो ठीक कर देंगे इसको है। तो उन्होंने, वो कवि थे, संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, कवि थे, तो उन्होंने एक, जैसे मानतुंगाचार्य ने भक्तामर बनाया ना, वैसे उन्होंने एक विषापहार स्तोत्र बनाया, उसका नाम है विष अपहार, यानी विष को नाश करने वाला, नाम तो बाद में पड़ा, वो तो मस्ती में मस्त रहे बस। तो उसमें ऐसा आता है कि देखो भगवान, अपने यहां मांगने का तो कोई समझ लो व्यवस्था है नहीं, ज्ञानी को कोई इच्छा होती नहीं, और वितराग भगवान कुछ देने वाले है नहीं, दोनों तरफ से बात है, भगवान कुछ देने वाले है नहीं और हमें कुछ चाहिए नहीं। तो भी आप कहते हो कि बेटा तुम आए हो हमारे दरबार में तो कुछ तुम लेके जाओ, तो हम व्यवहार से मांग ही लेते हैं, तो क्या मांगते हैं कि मेरी मांग समाप्त हो जाए, ये मांगते, कोई चीज की कामना नहीं रहे ये मांगते। तो बात तो ये कहां से चली है कि पर्याय की कामना भी ज्ञानी को नहीं होती, वो तो अपने को वर्तमान में ही मुक्त स्वरूप देखते, ऐसे चैतन्य स्वरूप में अपनापन, वो सम्यक दर्शन का माल। और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब जो मांगोगे वो ही मिलेगा ऐसा नहीं, सुनना ध्यान से, श्रद्धा का मतलब एक भरोसा होता है। वो भरोसा किस बात का कि हम ये जो कह रहे हैं वो ही मेरा हित उसी में ही है। देखो डॉक्टर की श्रद्धा किसको बोलते हैं, डॉक्टर क्या कोई जादू से रोग दूर कर देता है क्या, फीस तो पूरी लेता है। श्रद्धा उसे कहते हैं कि अपन ने उसको लाखों रुपए भी दिए और अपने आप को सौंप दिया, अपनी लाइफ साइन कर दिए कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और अब तो तुम चीर फाड़ करोगे, ये नस काटोगे, वो नस काटोगे, किडनी बेच दो ये सब तुम्हारी ईमानदारी पर निर्भर है। भरोसा उसको कहते हैं कि ये मेरा अहित नहीं करेगा, इसका नाम श्रद्धा है। क्या? ये मेरा अहित नहीं करेगा, इसका नाम श्रद्धा है, एक बात। और दूसरा, ये अपने विषय में परिपूर्ण कुशल है, विशेषज्ञ है, निष्णात है, इसको अनुभव है, तो उनके ज्ञान का भरोसा और उनकी वीतरागता का भरोसा। फिर से इसको सुनिए, इस बात को, श्रद्धा किसे कहते हैं, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का क्या मतलब होता है। एक तो उनके ज्ञान का भरोसा कि वे जो छह द्रव्य का, सात तत्व का, मोक्ष मार्ग का स्वरूप बता रहे हैं, वो अपने छायिक ज्ञान में, प्रत्यक्ष ज्ञान में देख करके हमें बता रहे हैं, इसलिए उन गलती हो जाएगी ऐसी कोई आशंका उनके प्रति हो ही नहीं सकती। और दूसरी उनकी ईमानदारी, वीतरागता कि वे जो ये कह रहे हैं कि देखो ये विषय भोग दुख के कारण है, ये शुभ भाव भी बंध का कारण है, इसमें भी तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी, तो ये जो कह रहे हैं वो मेरे परम हित की बात कह रहे, हितोपदेशी, ख्याल में आया ना, ऐसा भरोसा, उसका नाम श्रद्धा है। और दुनिया समझती हो जो जाओगे जो मांगोगे सब पूरा मिल जाएगा, तो उसका नाम श्रद्धा है, ये तो मिथ्या श्रद्धा हुई भैया है। गजब बात है भाई, कुदेवों के चक्कर काटना वो तो गृहित मिथ्यात है ही, ये कामना के लिए, मनोकामना के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है, दो दो किलोमीटर की, पांच पांच किलोमीटर की, समय वीआईपी को जल्दी एडमिशन मिल जाता है, ख्याल में आया। लेकिन वीतराग देव के दरबार में भी कोई कामना रखे अंदर में कैसे मेरा रोग दूर हो जाए, कि मेरा फलाना हो जाए, कि मेरा धंधा ठीक चले, कि बेटी की शादी हो जाए, कि मुकदमा ठीक हो जाए, कि ये हो जाए, वो भी गरीब मिथ्या थी। सामने भले कल तो बहुत कहा था, सामने भले भगवान को बिठा रखा है। तो कुगुरु को देव की श्रद्धा नहीं होना और वितराग देव गुरु की श्रद्धा होना, ये सम्यक्त की पैकिंग है। ये तो पैकिंग है, माल तो अपना भगवान आत्मा जो उन्होंने बताया है वो असली सम्यक थे। ऐसे सम्यक ज्ञान में आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। देखो अपने स्वरूप का जान पना, ये आपको हर प्रवचन में ये बात मिलेगी। गुरुदेव की एक शैली है, उन्हें नरक के दुखों का वर्णन करना होवे ना तो भी वो पैराग्राफ भगवान आत्मा से स्टार्ट करें। भगवान आत्मा ज्ञान ने आनंद नो घन पिंड छे, अनंत शक्तियों नो संग्रहालय छे, एवा आत्मा ने भूली ने विषय कषाय मा सुख मान करके ये जीव नरक आदि में जाता है, तो वहां से चार गति के दुख सहन कर फिर गाड़ी उधर चली जाएगी। शुरुआत भगवान आत्मा से होगी है। तो अपने स्वरूप का जान पना, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। फिर देह आदि मैं नहीं हूं, राग आदि मैं नहीं हूं, मैं एक चैतन्य स्वरूप हूं, ऐसा भेद विज्ञान, ये है असली सम्यक ज्ञान। असली माने वो माल, वो अनुभव करने लायक, वो प्रकट करने लायक, वो मुक्ति का मार्ग। उसके साथ में ये जिनवाणी का अभ्यास, शास्त्र गुरुदेव ने बेचार कलाक वांचन जोइए, आत्मार्थी को बेचार कलाक वांचन करना चाहिए। फार्मूला तो बहुत जोरदार है, अभी अपन कितना फॉलो कर पाते। कभी कभी ऐसा लगता गुरुदेव तो फ्री थे तो वो तो दो चार घंटे की बात करें तो उसमें कौन सी बड़ी बात, उनको कहां ऐसे अभी दुकान पे बैठना पड़ता है कि दो चार, अरे वो दुकान पे बैठते थे तो भी दो चार कलाक वांचन तो करते ही करते थे, रुचि की बात है। तो शास्त्रों का अभ्यास करना, पढ़ना पढ़ाना, ये सब सम्यक ज्ञान का व्यवहार। पुस्तकें प्रकाशित करना, जगह जगह पहुंचाना, लोगों को पढ़ने की प्रेरणा देना, अनुकूलता प्रदान करना, जिस तरीके से लोगों को सुलभ होवे वैसा सुलभ कराना, ये सब सम्यक ज्ञान के व्यवहार के खाते में जाता है। अभी चारित्र, ये कौन सा प्रकरण चल रहा है, मोक्ष मार्ग की पैकिंग और मोक्ष मार्ग का माल। तो तीसरा पार्ट कौन सा है मोक्ष मार्ग में, चारित्र। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई, आप रूप में लीन रहे थिर, चैतन्य में लीनता, इसका नाम चारित्र है। ये बात तो वो लोगों को सहनी नहीं होती, समझ में नहीं आती। क्यों, हमने अपने दिमाग में जो इमेज है जगत के दिमाग में, ये तो बाह्य क्रिया में ही चारित्र मानता, बाह्य क्रिया मां राचता अंतर भेद न काय, और क्या है ज्ञान मार्ग निषेधता ते क्रिया, वो कहते ना कोई क्रिया जड़ थी रहा, उसकी व्याख्या है। तो ये खाना के ये नहीं खाना के ये पेन, देखो स्वच्छंदता होने की गुंजाइश नहीं है। जो आत्मार्थी होगा वो कभी स्वच्छंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है ना कि ये तीव्र कषाय तो दुख का कारण है, इसलिए वो उसमें क्यों जाएगा। थोड़ा बहुत साधारण भले जड़ की क्रिया में धर्म नहीं माने, लेकिन जैसी सहज क्रिया होती है, समझ में आया, तो वो क्रिया। देखो मैं एक बात कहता हूं, कोई बिजनेसमैन है तो अगर अच्छा कस्टमर आया, वो जानता है कि ये आएगा तो समझ लो बहुत अच्छा ऑर्डर देगा, बहुत बड़ी डील है, हैं? तो उसका रिस्पेक्ट करना, उसको अटेंड करना, उसके साथ में टाइम देना, फिर उसको चाय पानी वगैरह जो जिस योग्य हो, और बड़ा होवे तो घर पे ले चलना, घर पे ठहराना, घर पे भोजन कराना, ये व्यवहार जबरदस्ती करना पड़ता है कि ऑटोमेटिक होता ही होता है, समझ में आया ना। तो अंदर में जिसके प्रति प्रेम है, जिसकी महिमा है, तो उसके प्रति आदर भाव है, तो उसका व्यवहारिक जीवन में वो तो आए बिना रहेगा नहीं। ऐसे आत्मार्थी को मदमास मद्दू का त्याग, सप्त व्यसनों का त्याग इत्यादि जो साधारण व्यवहार है, रात्रि भोजन का त्याग, ये तो सहज होता ही होता है। यहाँ तो बात दूसरी, ये चारित्र नहीं है, यहाँ ये कहना है, ये चारित्र की पैकिंग है। क्या बोला? ये पांच अणुव्रत हैं, तीन गुणव्रत हैं, चार शिक्षा व्रत हैं, यही चल रहा है। प्रसाद सिद्ध उपाय में ऐसी कई वर्णन है। हमारे यहाँ जो अमृत भाई है ना देवलाली में, उनको इतना पसंद आया प्रसाद सिद्ध उपाय के व्याख्यान कि एक बार चल गया तो उनका भी इसको दोबारा कंटिन्यू करो, तो दोबारा ए टू जेड सारे व्याख्यान प्रसाद सिद्ध उपाय के दोबारा उन्होंने चलवाए। बहुत सरल और निश्चय व्यवहार की, समझ लो मैत्री पूर्वक सब सब व्याख्यान बहुत बढ़िया ऐसे। तो उसमें यही है, तो ये बारह व्रतों की क्रिया, क्रिया वो चारित्र नहीं है, वो क्या है? चारित्र की पैकिंग है। व्रत शील संयम इत्यादि जो जो क्रियाएं हैं वो चारित्र की पैकिंग है। माल क्या है? अंदर में चैतन्य में लीनता, वो लीनता में अनंतानबंदी का अभाव। परसों ये बात बहुत आई थी, नियम सार में ही आई थी शायद, अनंतानबंदी का अभाव, अप्रत्याख्यानी का अभाव, राग के अभाव रूप जो वितरागता का अंश प्रकट होता है, वास्तव में उसका नाम चारित्र है। प्रवचन सार में आता है, चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोत्ति निदिठो, मोहखोय विहीनो, परिणामो अपनो ही समो। चारित्र धर्म है, और धर्म वो साम्य भाव है। अब ये साम्य भाव में भी लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। साम्य भाव माने सबको एक नजर से देखना, बराबर है, एक समान मानना सबको, ऐसा ऐसा उचित है? सब चीजें एक सी होती हैं? देखो मुनिराज के समता भाव के बारे में एक बहुत बढ़िया पंक्ति छह ढाला में आती, अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थोति करन, अरे घाव तारण असी प्रहारण मैं सदा समता धरन। अरि हो के मित्र हो, दुश्मन हो के मित्र हो, एक सब मानते सब, कांच हो का कंचन हो एक सब मानते। अपन मान के देखो, कांच की गिलास खरीदना हो और जितने वजन की है उतने वजन के सोने के भाव में खरीद, हम तो कांच और कंचन में भेद नहीं करते, और स्वर्ण बाजार में बेचना होवे तो कांच के भाव बेच देना, तो मूर्ख कहा जाएगा कि समता भाव वाला कहा जाएगा? तो क्या मतलब है समता भाव का? ध्यान देना, पहली चीज तो सब वस्तुओं को द्रव्य दृष्टि से देखते हैं। कंचन और कांच का भेद तो पर्याय दृष्टि से है, द्रव्य दृष्टि से तो कंचन भी पुद्गल है और कांच भी पुद्गल है, तो उनमें समानता देखना हो तो द्रव्य दृष्टि से देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंचन के प्रति राग नहीं है और कांच के प्रति द्वेष नहीं। अरे माने शत्रु, ये तो व्यवहार की भाषा में बोलना पड़ता है, अरे मित्र, खरे खर तो ना तो कोई शत्रु है ना कोई परद्रव्य है, परद्रव्य हमारा भला बुरा करता नहीं, तो काय का शत्रु और काय का मित्र? तो उसे जीव मात्र देखना, भगवान आत्मा देखना। अब एक बार सब जीवों को अपन भगवान आत्मा देखो, अमृतचंद्राचार्य ने देखा, अपने में सिद्धत्व की स्थापना करता हूँ और श्रोताओं के आत्मा में भी सिद्धत्व की स्थापना करता हूँ, तो सब जीवों को सिद्ध समान देखते हैं, अभी कैसे राग द्वेष होगा बताओ? तो राग द्वेष नहीं होना उसका नाम समता भाव, समता भाव होना उसका नाम चारित्र, वही सामायिक है, वही चारित्र है, वही धर्म है, इस तरह से वो चारित्रम वो असली धर्म। तो ये इसकी व्याख्या मैंने की, निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, यानी मोक्ष मार्ग का कथन वितराग भाव से भी है और साथ में व्यवहार से व्रतशील संयम इत्यादि की भाषा में भी मोक्ष मार्ग का वर्णन होता है। अभी एक और फार्मूला, यथार्थ नु नाम निश्चय और उपचार नु नाम व्यवहार छे। इसका क्या मतलब है? थोड़ी चर्चा इसकी कल आ गई थी वैसे। जैसा वस्तु का स्वरूप है तो यथार्थ की परिभाषा क्या है? ये तो शब्दार्थ हुआ, जो कभी चेंज नहीं हो वो यथार्थ, से आत्मा उपयोग लक्षण वाला है, ये बात कभी बदलने वाली नहीं। निगोद में जाए तो उपयोग लक्षण वाला रहेगा, नरक में चला जाए तो उपयोग लक्षण वाला रहेगा, चेतन को है उपयोग रूप, सिद्ध भगवान बन जाए तो भी उपयोग लक्षण वाला रहेगा। तो ये नहीं बदलने वाला सत्य है, ये शाश्वत सत्य है, ये अपरिवर्तनीय सत्य है, ये यथार्थ है, परमार्थ है, यथार्थ है। और जो क्षणिक सत्य है उसको भी सत्य तरीके कहना मानना ये उपचार हुआ। मनुष्य पर्याय ये सर्वथा असत्य नहीं है, इसको सर्वथा असत मानेगा तो निश्चयाभासी हो जाएगा, और आत्मा मनुष्य ही है ऐसा अनुभव करेगा तो व्यवहाराभासी हो जाएगा, और मनुष्य भी है और चैतन्य स्वरूप भी है, दोनों एक सरखे हैं ऐसा मानेगा तो उभयाभासी हो जाएगा। तो ज्ञानी कैसा मानेगा फिर? तो ज्ञानी होने के लिए क्या मानना? चैतन्य स्वरूप है ये, उसका वास्तविक पारमार्थिक दृष्टि में लेने लायक, जानने लायक, जमने लायक, रमने लायक, ऐसा स्वरूप है। और मनुष्य है वो जानने लायक है केवल। बारहवीं गाथा क्या बोलती है? जाने लो प्रयोजन वांछ है, वर्तमान में मनुष्य पर्याय का संयोग है ऐसा जान लिया। देखो एक मजे की बात, मान लो आप किसी बहुत बड़े आदमी के घर में भोजन करने गए और उसने चांदी की कटोरी में दूध पाक आपको परोसा, चांदी की थाली, चांदी की चम्मच, चांदी की कटोरी इत्यादि इत्यादि, समझ में आया? तो चांदी की कटोरी के साथ आपका वर्तन कैसा होता है और दूध पाक के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? स्वाद किसका लेते हैं, चांदी की कटोरी का कि दूध पाक का? लेकिन चांदी की कटोरी में इन्होंने दिया है ऐसा जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो ये चांदी की कटोरी दी है ये जाने लो प्रयोजन वांछ है, खा दे लो नहीं। समझ में आया? ये खाया हुआ प्रयोजनवान नहीं है, कटोरी चांदी की नहीं सोने की होवे, उसमें वो साइड में वो लगे होवे क्या बोलते हैं हीरा माणिक वगैरह लगे होवे, तो भी जानने मात्र की है कि हाँ यार चीज तो बहुत बढ़िया दी, ऐसे हमको ऐसी रिस्पेक्ट दी, ऐसे आदमी लोग तो समझ में आया ना, बिल्कुल कॉमन चीजों में रखते हैं, इनने तो चांदी सोने की चीजें में परोसा है, तो वो जानने मात्र की। एक कण भी कोई ये कल्पना नहीं करता कि थोड़ा सा मैं इसको जीभ से चाट के इसका स्वाद तो ले लूं कम से कम। बोलो कोई है ऐसा मूर्ख कि चांदी की कटोरी आई तो चाट के उसका स्वाद लेवे, ऐसा कोई है? वो खाली जानने की है, आदरने लायक नहीं, खाने लायक नहीं, स्वाद लेने लायक नहीं। और वो दूध पाक जो गुरुदेव की भाषा में बोले हैं कि 6 घंटे बाद है, 8 घंटे बाद उसकी क्या दशा होने वाली है, ऐसा जानते हुए भी वो उसको याद नहीं करेगा। वर्तमान में तो बढ़िया मधुर दूध पाक है ऐसा जानकर उसका स्वाद लेगा। तो जानने के लिए तो दोनों, निश्चयने का विषय भी और व्यवहारने का विषय भी, लेकिन अवलंबन करने के लिए, आदर करने के लिए एक परमार्थ निश्चयने का विषय और वो व्यवहार तो खाली जानने का विषय। जब अकेला जानने का है, खाने के लायक नहीं है, खाने की चीज नहीं है तो देते क्यों है? तो भैया बिना कटोरी के अगर खाना होवे तो फिर नग्न दिगंबर होकर के मुनि होकर के खड़े हो जाओ। तो भी पानी पात्र में तो लेना ही पड़ेगा, तो भी कोई ना कोई पात्र तो रहेगा, पात्र बिना वस्तु न रहे, है ना? पात्रे आत्मिक ज्ञान, पात्र थवा सेवो सदा, ब्रह्मचर्य मति मान, तो भी हाथों को पात्र बनाना पड़ता है, इसलिए पानी पात्र बोलते। पात्र के बिना वस्तु लेन देन का व्यवहार नहीं होता, लेकिन पात्र की पहुंच कहां तक? केवल मुख के पास तक होती है, अंदर नहीं जाता पात्र। अरे चम्मच भी अंदर चली जावे तो भी माल तो पेट में जाता है, तो चम्मच पेट में नहीं जाती है। ऐसे व्यवहार जो है परमार्थ को समझने के लिए सहायक होता है, वो स्वयं परमार्थ नहीं हो जाता है। ऐसी अनेक बातें इसमें हैं, तो मैंने आज अति संक्षेप में आपको निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास एक पैकिंग और माल के उदाहरण से क्लियर किया है। मुझे डेवलप करना है व्यवहाराभासी वाले प्रकरण। कई लोग मान लो पढ़ने का भी सोचते हैं, तो इसमें 218 पेज पर 218 केवल व्यवहारावलंबी जैना भाषोनु निरूपण। निश्चय भाषी की चर्चा में ज्यादा टाइम बहुत लगेगा, उसमें इतना समझ लेना कि वो व्यवहार का सर्वथा निषेध करता है। इसी का देखो व्यवहार वाले पॉइंट पे तीनों भूले हैं, एक पॉइंट पे तीन भूले। क्या? व्यवहार का सर्वथा निषेध, तो क्या हो गया? निश्चयाभास। व्यवहार को ही परमार्थ माना, तो क्या हो गया? व्यवहाराभास। और व्यवहार को निश्चय के समान आदरणीय माना, तो क्या हो गया? उभयाभास। और व्यवहार को व्यवहार मात्र जाना, परमार्थ नहीं है ऐसा माना, तो क्या हो गया? तो सम्यक ज्ञान हो गया। व्यवहार के ही मामले में गड़बड़ होती है सब, इसलिए व्यवहाराभासी के स्वरूप की चर्चा थोड़ी विस्तार से अपन कल इस पेज से प्रारंभ करेंगे। अभी का समय हो गया, इसलिए यहीं विराम लेते हैं।